जी, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो टेस्ट इंशाल्लाह होगा आपका। एक तो ये किताबुल जनाइज जो है इसका, और जो आपका हदीस का शुरू का जो था पार्ट, जिसमें सारी वो बातें कि हदीस के क्या अकसाम हैं और कौन कौन सी तरह की अहादीस हैं और किस तरह से उनको अलग किया जाता है, आप लोग वो पहले कर चुके हैं। अच्छा, फोन पे कम है आवाज़। जी, अब से आ रही है फोन पे आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हदीस की अकसाम वगैरह हैं, शुरू का जो पूरा पोर्शन है, वो इंशाल्लाह ताला आप लोग उसकी भी तैयारी करेंगे तो ये बहुत आसान है। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को ही हम कर लेते हैं, या आप लोग बताएं कि क्या आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए। जी, 2 वीक्स चाहिए आपको। अच्छा, वैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये जनवरी में इस बात को कि इंशाल्लाह आप तैयार रहें, ये आप लोगों का टेस्ट होगा। हाँ, लेकिन ये वो तो सही है जो टेस्ट है, मगर ये कोई सरप्राइज तो है नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जनवरी में बताया था कि किताबुल जनाइज और इसका टेस्ट होगा जो आप लोगों का शुरू का ही है, तो आप लोगों को रेडी रहना चाहिए था ना, क्योंकि फिर हम आज हमारी इंशाल्लाह ताला किताबुल हज मुकम्मल हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम किताबुल हज के लिए फिर तैयारी शुरू कर देंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला 29th है मंडे, उसको आपका किताबुल जनाइज का और हदीस की पूरे जो था शुरू का वो सारा आपका इंशाल्लाह होगा। सौम हमने नहीं किया। हाँ, सेपरेट ही होंगे, किताबुल हज का सेपरेट होगा और किताबुल जनाइज सिर्फ ओनली किताबुल जनाइज और जो हदीस का शुरू का था उसका होगा। किताबो सोम हमने मिस कर दिया। अच्छा, ये मेरे ख्याल में नहीं था कि किताबो सोम हमने अभी तक नहीं किया, मगर हम उसको भी अलग से कर लेंगे। किताबुल हज पहले करेंगे इंशाल्लाह और किताबो सुयाम बाद में करेंगे, ठीक है जी। किताबुल जनाइज और हदीस के शुरू का ये आपका कमिंग जो मंडे होगा उसको आपका टेस्ट होगा। अब जो लोग अगर अभी तक भी ये बैठे में सोच के कि नहीं, अब जब अनाउंस होगा तभी हम करेंगे, तो फिर मैं तो अनाउंस कर चुकी हूँ, ह्यूस्टन जाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि इन दो का टेस्ट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम किताबुल हज का करेंगे। मेरा नहीं वेट किया करें कि मैं बताऊंगी तो फिर आप लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर खत्म हो जाए अब किसी बात भी इसका टेस्ट अनाउंस हो सकता है, तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट की बात थी, वरना ये मैंने पहले बात बता दी हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर आपका टेस्ट है, ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं हम अपना रिव्यू सेशन। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यन्फ़उना व ज़िदना 'इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम हदीस नंबर 830 तक मुकम्मल कर चुके अपना रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम 831 से शुरू करेंगे जी। कौन लोग आए हुए हैं, कई लोगों के नाम नहीं यहाँ पे लिखे होते। चलें चलें, सबाहत आपसे शुरू कर लेते हैं। एक तो ये इस बात का जवाब मुझे बताएं कि हदीस में एक जगह आया रुक नहीं ना यमानी यही, तो कि किन अतराफ को कहते हैं काबा के, कौन सी अतराफ है,
ये मगरिब मशरिक
यानी कौन सी हुई, अगर वैसे आपसे पूछा जाए तो कौन सी अतराफ हुई है।
तो
किस तरफ वाली, यानी आप ये बताएंगे। अरुकनैन अयमानियाई,
शुमाल की तरफ की था।
अच्छा नाजनीन आप बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा कोई नहीं। अच्छा जी आप बताएंगी, मरियम आप बताइए।
अस्सलाम
वालेकुम। अस्सलाम
वो इसलिए क्योंकि ये जैसे वो जमात के साथ करेगी तो कोई बाकायदा नमाज नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जाए जमात के साथ, वैसे अगर अपनी जैसे घर में पढ़े या खुफिया पढ़े तो वो ठीक होगा।
ठीक है,
बाकायदा इसको एक बना लेना जमात के साथ।
शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे का भी रिवाइज करते रहा करें, ये ना हो कि आगे हम चलते जाएं और पीछे का बिल्कुल ना आपको आए। ठीक है, ज़रूरी है कि आप लोग पीछे की रिवीजन करें क्योंकि काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और फिर हम जब पीछे का नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भूल जाएगा और आपको टेस्ट में तैयारी करने में बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है ना। अच्छा जी राजिया आप बताएंगी कि जब तवाफ किया जाता है तो कौन से अतराफ को छूना काबा के मुस्तहब है?
कौन से तरफ को छूना मुस्तहब है? पढ़ा था एक तो
अच्छा कोई कोई मसला नहीं। ये भी अच्छी बात है कि देखिए अगर आपको नहीं आता ना तो आप बता दिया करें कि हमें नहीं आता, बजाय इसलिए कि हम तुक्के मारते रहें कि हम इधर से उधर, चलो कोई ना कहीं तो तुक्का लग जाएगा। और आपने नहीं पढ़ा हुआ जस्ट से कि मुझे नहीं आता, क्योंकि लर्न करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम तुक्के से हम कर लेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा तो हम कभी लर्न नहीं कर सकेंगे। ठीक है महरीन आप बताएं कौन से अतराफ को छूना मुस्तहब है? वालेकुम अस्सलाम जी। काबा के कौन
से अतराफ को, एक तो जहाँ पे हजरे अस्वद है और एक उससे पहले रुकने यमानी वाला, इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ और बाकी जो में दो हैं कहा जाता है कि वो चूंकि कॉर्नर्स नहीं है बिकॉज वो हतीम भी काबा का हिस्सा ही है तो दे आर नॉट एक्चुअल कॉर्नर्स,
शायद नहीं वाकई ये बात है कि उन दोनों को इसलिए नहीं छुआ जाता। शाबाश ठीक है कि वो दो कॉर्नर्स जो हैं वो काबा के एक्चुअल कॉर्नर्स नहीं है, एक्चुअल तो वहां से उसकी बाउंड्री शुरू होती है ना जहाँ पे हतीम है, तो हतीम को भी इंक्लूड किया जाता है तो इसलिए वो दो कॉर्नर्स नहीं बनते। समझ आ गई ये बात सबको? सभी को ये बात समझ आ गई कि क्यों नहीं छुआ जाता दूसरे दो जगहों को? यहाँ पे लिख दिया करें। अच्छा ये जवाब नहीं आपने बताना पहल टॉप पे, ठीक है। अच्छा जी शबनम खान आप बताएंगी कि क्या कोई अपने जानवर को हरम में भेज सकता है जबकि खुद मैं हज के लिए नहीं गई, तो मैं किसी को अगर कह दूं कि वहां पे मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें आज के दिनों में तो क्या ये सही है?
जी ये सही है क्योंकि आप सल्लम ने 9 हिजरी को जो है ना वो जब हज किया था तो उससे पहले एक साल पहले आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ से कुर्बानी के जानवर भेजे थे।
शाबाश, तो फिर क्या उन अगर मसलन मैं यहाँ से भेजती हूँ तो क्या मेरे ऊपर वही पाबंदियाँ होंगी जो एहराम वाले पे होती है?
नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होंगी, बस आप भेज दिया तो नहीं उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
शाबाश वेरी गुड शबनम, बहुत अच्छा शाबाश। अच्छा और जी शाहदी आप बताएंगी कि क्या जरूरत के तहत कुर्बानी के जानवर से कोई फायदा वगैरह उठा सकते हैं हम?
जी हाँ सलाम अलैकुम, जी हाँ उठा सकते हैं, उस पर सवारी भी कर सकते हैं।
शाबाश, यानी ऐसे ना उसको सीक्रेट समझें कि बस इसको अब बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, इसके ऊपर तो बिल्कुल कोई सवारी नहीं कोई कुछ नहीं, ये कोई ऐसा मोहतरम हो गया कि अब सवारी नहीं की जा सकती, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात और थोड़ी सी यहाँ पे ज़िम्मन क्योंकि इससे मुतल्लिक एक बात आ रही है इसलिए आप लोग ये इस चीज़ को भी नोट करें कि जो कुर्बानी के जानवर है ना वो शायर अल्लाह में से हैं, ठीक है, वो भी अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब ये हमारे यहाँ इस चीज़ का रिवाज पड़ता जा रहा है जैसे कि कुर्बानी के जानवर हैं उनके वो कोई यानी शहर की जो कोई एक्ट्रेसेस हैं वो उनके साथ कैट वॉक कर रही हैं और उनको एक मजाक बनाया जा रहा है और इस तरह किया जा रहा है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, कलादे पहनाना उनके, उनको और उस तरह से उनको डेकोरेट किया जाता है, कभी मेहंदी उनके ऊपर लगा दी जाती है या कभी और कोई हार पहना दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो जायज है। मगर इस तरह से मजाक के तौर पे उनको लेना, मजाक उनके बनाना, इसी तरह अब ये नया कैटवॉक का रिवाज शुरू हो गया वो करना, तो ये इनको शायर अल्लाह ही समझा जाए, ये एक सेक्रेट चीज है, ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कुर्बानी करना, इसको भी एक बिल्कुल यानी एक हंसी मजाक बना लेना, ये कोई जायज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, कौन और यहाँ पे, ये नाम कईयों के लिखे नहीं हुए, जैसे 954279, कोई एडमिन का तो नहीं है जी, राहत आप बताएंगी। अच्छा, आपका ठीक है, मैं आपसे अभी पूछती हूँ। राहत आप बताएंगी कि मक्का से निकलते वक्त आखिरी काम जो करना है वो क्या है?
वो तो आपसे विदा है जी, जो कि आखिरी काम करना है और किसी के मजबूरी में ना किया जाए, जैसे हज आ गया तो 10 लेल हज का जो तवाफ है उसी को माना जाएगा।
शाबाश, और इसकी कोई दलील है आपके पास?
जी, दलील है, जैसे हम हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला को आगे थे हज और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक लिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर 10 लेल हज का तवाफ कर दिया है तो वो उसी में काउंट किया जाएगा, फिर तवाफे विदा की जरूरत नहीं है।
शाबाश, अच्छा, ये हमारे लिए बहुत अहम एक मामला है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है, अब क्योंकि हम काफ़ी काफ़ी दिन वहाँ पे होते हैं हज के बाद भी, जिसकी जो फ्लाइट है, तब है कि खुदा ना खास्ता बीच में कोई इस तरह का मामला हो गया, तो अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको तवाफ़े विदा किए बगैर वहाँ से निकल नहीं सकते, बल्कि जो तवाफ़े इफ़ादा या तवाफ़े ज़ियारा जो भी है जो आपने कर लिया उसी को तवाफ़े विदा शुमार कर लिया जाएगा, और फिर अलग से आपको तवाफ़े विदा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अब तहसीन आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर तशरीफ़ ले गए थे तो आपने क्या किया था काबा में जब आप
सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम? काबा के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो क्या किया था आपने अंदर जाके?
आपसे तो फिर दुआ की थी वहां जाके।
अच्छा,
और दो रकात नमाज अदा की थी।
अच्छा, तो दो रकात नमाज किस रुख पकड़ के पढ़ी थी, किस तरह से पढ़ी थी या कैसे?
दो रकात नमाज किस तरह से पढ़ी थी,
यानी किस तरफ रुख करके या
किस रुख करके पढ़ी थी? नहीं सर, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि जब आप सिर्फ इतना पढ़ाते थे जरा बात, तो इस तरह से नहीं, लेकिन मुझे पहले ही था, नहीं सर, सॉरी,
मसला नहीं। अदीला आप बताएंगी जी। अदीला, वालेकुम अस्सलाम।
मुझे बिल्कुल परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि कुछ था कि उन्होंने शायद दो सतून आगे थी और दो सतून पीछे थे, कुछ इस तरह वो मिडल में थे, कुछ इस तरह का मुझे जहन में, लेकिन कुछ परफेक्ट याद नहीं
है। ओके, कुलसुम आप बताएंगी जी। कुलसुम आप बताएंगी
जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।
आपने दोस्तों के दरमियान में पढ़ी थी, क्योंकि वो आ रही, क्योंकि काबा का हिस्सा है वो अंदर, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई खास डायरेक्शन की तरफ आपने पढ़नी है, क्योंकि आप उसके अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली,
यानी कि आज अगर हमें
दोनों के दरमियान उन्होंने पढ़ी थी।
ठीक है, आज अगर हमें यानी अल्लाह ताला इस हमें नसीब करे अंदर जाना, तो फिर हम किस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? अगर हमें अंदर जाना नसीब हो जाता है, हम किस तरफ डायरेक्शन करेंगे, किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे? हम
किसी भी तरफ पढ़ना तो उसी की तरफ ही होगा वो, तो
ठीक है, यानी आप किसी डायरेक्शन में भी, ये भी पता होना चाहिए कभी अल्लाह ताला हमें ले जाए अंदर, अल्लाह ताला हमारी ये भी ख्वाहिश पूरी फरमा दे उसका इजन हो तो। तो अंदर जाके फिर आप किसी तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ सकती हैं और दुआएं कर सकती हैं, और क्योंकि किबला ही है ना। और ये एक और बात बताएंगी कि ये जो सारी अहादीस हैं जैसे 838, 839, 840, इसके अंदर किसी में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ही नहीं अंदर? किसी में लिखा है आपने अंदर गए थे, नमाज नहीं पढ़ी, दुआ की? किसी में लिखा हुआ है कि आपने नमाज भी पढ़ी? तो क्या ऐसे आप इनको वो करेंगे?
मैं बताऊं?
जी जी बताइए।
इसमें सिर्फ ये था कि आप हज के मौके पर आप गए थे अंदर काबा में।
जी ठीक है, शाबाश। यानी अब इसके अंदर अगर आपको कोई पूछे जी देखें तो इसके अंदर हदीसों में तो कितनी डिफरेंसेस हैं और ये क्या है और वो, तो आपने उसके अंदर ये बात बतानी है कि जब आप फतह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अंदर तशरीफ ले गए थे, जब उससे पहले पहले भी तो गए थे उमरा करने के लिए, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 रकअत मकाम इब्राहिम के पास पढ़ी थी। तो यानी आप डिफरेंट टाइम्स में भी तो गए हैं, इसलिए ये नहीं है कि हम कहें कि इसमें तो ये है और उसमें कुछ और है और तीसरे में कुछ और है, तो अब ये कैसे हो गया और पता नहीं, अल्लाह ना करे कोई शक में ना पड़ जाए। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि डिफरेंट औकात में डिफरेंट, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अच्छा जी, और किसका? फरजाना चौधरी, आप बताएंगी कि काबा को तोड़ के क्या नया बनाया जा सकता है?
नहीं, उसको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नबी सल्लम ने ख्वाहिश तो जाहिर की थी लेकिन फिर बनाया नहीं था क्योंकि फितने के डर से।
अब आप देखें कि इस तरह का सवाल अगर मैंने कर लिया ना टेस्ट में और आपने लिख दिया कि नहीं बनाया जा सकता तोड़ के, तो वो तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कि जरूरत पड़ने पे तामीर दोबारा की से, वो अलग सवाल है कि हतीम को क्या दोबारा इस तरह से तामीर किया जा सकता है? नहीं। ये लेकिन अगर आपसे कोई पूछे काबा को तोड़ के नया बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, जाहिर है, अगर उसकी मेंटेनेंस करनी है, अगर उसके अंदर कोई दराड़े आ गई हैं, अगर उसके जाहिर है मुरम्मत की जरूरत है हर टाइम गुजरने के बाद 100-200 साल बाद भी, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि वो वैसे ही रहेगा, जाहिर मुरम्मत की भी जरूरत होगी। तो अगर तामीर करनी पड़ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए अगर इसको सवाल को पूछा जाए तो हमने ये कहना है कि हाँ दोबारा तामीर की जा सकती है, वो एक अलग सवाल होगा जिसका आप जवाब दे रही हैं। ठीक है। अच्छा राफिया, आप बताएंगी कि जब मुशरिकी ने मक्का ने काबा को तामीर किया था तो उन्होंने ये इतना हिस्सा क्यों छोड़ दिया जबकि हतीम भी काबा का हिस्सा था?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि उनके पास उस वक्त उतना पैसा नहीं था तो इसलिए उन लोगों ने छोड़ दिया था उसको तो करने के लिए।
कैसा पैसा नहीं था? क्या उनके पास माल ही नहीं था काबा पे लगाने के लिए? नहीं था पैसा?
नहीं, क्योंकि वो काबा माल तो था लेकिन वो लोग चाह रहे थे ना कि काबा के लिए माल सिर्फ हलाल से हो।
हाँ जी बिल्कुल, ये मेंशन करना जरूरी है कि माल लगाने को तो वो उस वक्त भी दिलो जान से राजी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कोई सूद का माल ना इसके अंदर लगाया जाए, कोई तवायफ का की कमाई को यहाँ पे ना लगाया जाए। यानी कितना सुभान अल्लाह, काफिर हो के, हालांकि उनके अंदर तो वो सूद को, सूद का लेन देन करते थे, लेकिन ऐसी चीजों से जो माल कमाया हो उसको उन्होंने नहीं लगाने का कहा था। और आज देखें अल्लाह अकबर के हर तरह का पैसा जो है ना मस्जिदों में भी लगाया जाता है, बल्कि बाकायदा तवायफें जो हैं वो ये मज़ारों पे चादरें चढ़ाने आती हैं और उनकी तामीर के लिए और उनके लिए फंड में हिस्सा डालती हैं, और इसको उनको जायज़ समझा जाता है, कोई इसको नहीं बुरा नहीं समझाता था कि कोई अगर ऐसी जगह है जिसको हम सीक्रेट समझते हैं तो वहाँ पे हम कम अज़ कम अपनी नाजायज़ कमाई से नहीं हलाल कमाई से लगाएं। इतनी सेंस देखें उनको भी थी कि क्या किस तरह से किया जाए, और उस लिहाज से देखा जाए जो जैसे असल तामीर थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, तो उसके लिहाज से आज अगर उसकी डिजाइनिंग की जाए तो फिर काबा किस शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का, फिर स्क्वायर शेप का नहीं बनता, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसी उन्होंने तामीर की थी, तो उस लिहाज से। लेकिन देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के हाथ इतनी खैर है और इसके अंदर भी बहुत बड़ी खैर है, अभी हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले आप कौन, رہ گیا ہوگا. جی جی زاہدہ بہزاد آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کعبہ کے بارے میں.
جی آپ نے مجھ سے پوچھا.
جی 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 جی
جی آپ کیا کہہ رہی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کعبہ کے بارے میں.
ان کی خواہش تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس پہ ہو جائے.
اور وہ کیسی تھی؟
وہ ریکٹینگولر تھی.
اور دوسری اور کیا ایک بات تھی؟ ایک یہ ایک شیپ کی بات ہو گئی. دوسری
اور دوسری وہ دو دروازے آپ چاہتے تھے کہ بنا دیے جائیں جس سے پہلے ہوتے تھے.
بالکل صحیح. دو دروازے بھی اور ایک اور بات بھی ہے اس میں.
دو دروازے اور اس میں بس
اچھا تیسرا یہ ہے. تیسرا اب آپ یاد رکھیے گا کہ جو دروازہ تھا نا اس کو زمین کے برابر رکھا جائے, کیونکہ یہ بھی بعد کی چینجز میں سے تھا. قریش نے بعد میں چینج کیا تھا کہ انہوں نے اونچا کر دیا تھا. اور اونچا کس لیے کیا تھا پہل ٹاک پہ بتائیں آپ. پہل ٹاک پہ بتائیں کہ اونچا انہوں نے کیوں کیا تھا. پانی کی وجہ سے نہیں کیا تھا. کوئی اور بتائیں. جی سو دے کین انٹر ہو ایور دے وانٹ ٹو. جس کو چاہیں گے اس کو بس اپنی مرضی سے اندر آنے دینا چاہیے, کیونکہ اگر برابر ہوگا زمین کے جو چاہے گا اندر گھس جائے گا. دیکھیں ابھی بھی ہو سکتا ہے اتنا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے دروازہ ہی نہ توڑ کے اندر پہنچ جائے. اتنا دیکھا اس کے اوپر کتنا زور ڈالا ہوتا ہے, کتنے لوگ اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو اب زمین کے ساتھ ہوتا تو پتہ نہیں اندر ہی پہنچ چکے ہوتے. تو اب ہاں جی اب بھی ایسا ہے جس کو جو چاہتے ہیں اندر لے کر جاتے ہیں. اس وقت بھی تالا تو لگا ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ سارے ہی نہیں اندر چلے جائیں. جس کو ہم چاہیں تو اس کے لیے پھر اسپیشل سیڑھی بھی لگتی, پھر اس سے پھر اسپیشل چڑھا جاتا. تو یہ چینج بھی بعد میں کی گئی تھی, قریش نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ایک تو ریکٹینگل شیپ کا ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. دوسرے نمبر ٹو لکھیں جس دروازہ جو ابھی ہے اس کے بالکل اپوزٹ طرف بھی ایک دروازہ تھا تو وہ بھی دروازہ ہو. اور اسی طرح دروازہ بھی برابر کر دیا جائے زمین کے جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی طیبہ آپ بتائیں گی کہ پھر کیوں نہیں ایسا کیا گیا, کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اپنے زمانے میں اگر ایک خواہش تھی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ خواہش تھی تو مکہ فتح بھی ہو گیا تو آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا پھر؟
ہاں جی وہ اس لیے کیونکہ جو ہے لوگ جو ہے وہ اقسام لے کر آئے تھے, یہ چیز جو ہے ان کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی اگر اس وقت ہم جو ہے اس کی شکل کو چینج کرتے.
شاباش. اچھا اس وقت دیکھیں اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں. اس وقت لوگ نیا نیا اسلام لے کر آئے تھے اور کعبہ کو کوئی چینج کر دینے یا اس سے کر ریکٹینگل ہو جائے یا یہ ہو جائے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی کہ اگر فتنہ پھیل جاتا تو یہ بہت بڑی چیز ہونی تھی. کیونکہ لوگوں نے کہنا تھا لوگ اب ایک دین تو نیا شروع کیا اب اس کے بعد کعبہ کو بھی پیچھے پڑ گئے اب اس کو بھی ایسے شروع کر دیے تو ہر چیز کے اندر یہ کر رہے ہیں. ہاں مگر اچھا کیا یہ رول اپلائی ہوگا ہر جگہ؟ یہ مجھے آپ کون بتائے گا؟ جی عشرت آپ بتائیں گی کیا اس طرح کا رول اپلائی ہوگا؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اسی طرح کیا چھوڑ دینا چاہیے اگر فتنے کا ڈر ہو؟
جی استاد اگر فتنہ برپا ہوتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے.
تو فتنہ تو اس سے بھی برپا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ سارے بتوں کو گرا دیا جائے, اس سے نہیں فتنہ برپا ہونا تھا قبروں کو فرمایا؟
نہیں سمجھ میں آیا استاد.
اچھا قبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیٹ کر دیا جائے بتوں کو گرا دیا جائے تو اس سے بھی تو فتنہ برپا ہوتا تھا نا. یہ کون ہے شہناز آپ ہیں؟ جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پہ فرض اور لازم کی بات ہوتی ہے تو اس میں لچک نہیں ہوتا, مطلب اس لیے بتوں کو توڑا گیا.
جی بالکل آپ کی مسئلے کی عمارت ہی ہے نا. چلو اگر ریکٹینگل شیپ میں نہیں ہوئی اگر اس شیپ میں ہو گئی اور دوسری طرح دیواریں بھی کر دیں تو کیا ایسا حرج ہو گیا؟ اس سے ہمیں اتنا بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی ایسا دین میں کوئی پڑا ہوتا اس کو کوئی اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا उसमें अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उनमें इतने रिजिड हो जाते हैं कि नहीं बस ऐसे ही करना और इसी तरह होगा, वरना पता नहीं आप लोग मुनाफिक हैं और ये लोग तो ऐसे हैं और इन लोगों को तो कोई दीन का ख्याल, काबा का मामला है, शायर अल्लाह का मामला है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी हिकमत को देखा कि फसाद ना पैदा हो, यानी फसाद कितनी बुरी चीज है, यानी जिसको कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने कि फितना जो है ना, ये जितना फसाद जो है कत्ल से भी बदतर है, ये उससे भी बड़ी बात है। और हम इन चीजों को सामने नहीं रखते, और बाज दफा हमारे थोड़ी सी लचक शो कर देने से बहुत सारे फितनों से आप महफूज रह सकते हैं, लेकिन उतने छोटे छोटे मामलात को हम पता है कैसे बना लेते हैं, जैसे पत्थर पे लकीर, जैसे ये कुरान है जो कभी नहीं बदल सकता, ऐसे बना लेते हैं। हाँ, जहां पे ये बात होगी जो कोई फराइज की बात हो, जिसमें अकीदे का मामला हो, जिसमें ये हो, वहां पे जरूर करें। मगर आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से करते हैं। अभी पिछले दिनों किसी ने सवाल किया कि देखें अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में हमारे नए नए बिल्कुल दाखिल हुए, वो हमारे रिश्तेदार हैं और कोई फौतगी हो गई तो वो उस पर कुरान पढ़ रहे हैं, तो अब अगर क्या मैं उनको जाके रोकूं, क्या उनको कहूँ? अब क्या एक रिएक्शन ये हो सकता था कि बिल्कुल उनको रोकें और उनको बिल्कुल मना करें क्योंकि ये तो बिदत हो गई, और ऐसे एक बात ये हो सकती है कि फिलहाल के लिए उनको ये बताया जाए कि देखिए जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, आप औलाद हैं, आप जरूर पढ़ें, आपके वालिद को इसका होगा, लेकिन बाकी लोगों का कोई दलील नहीं मिलती कि इसका कोई यानी कोई उनको मिल सकता है सवाब, बस इतनी बात कह देना काफी। उसके बाद आप खड़े होके वहां पे तकरीरें शुरू कर दें, ये कर दें, तो उसके बाद वो क्या कहेंगे, ये तो फलां है, ये फलां है, आपको एक लेबल दे देंगे और कुरान से भी हट जाएंगे। तो पांच दफा आपको मसलहत के साथ चलना पड़ता है। इसी तरह किसी कोई कहीं गई खातून, तो वहां पे लोग सूरह यासीन पढ़ रहे थे, नहीं उन्होंने कहा कि थोड़ी देर का जब तक अभी कुछ शुरू नहीं होता दर्स, तो आप लोग सूरह यासीन पढ़ लें। तो उन खातून ने फौरन कहा देखो मुझे मत पकड़ाना, मुझे मत पकड़ाना, बिदतें तुमने शुरू की, और ये, और वहां पे एक फितना फसाद खड़ा हो गया, जो पढ़ रहे थे वो उनसे लड़ना शुरू हो गया। वो देखिए एक चीजों को मसलहत के साथ, कुरान पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है, कोई उसके अंदर बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि बाज़ दफा हम चीजें सीख लेते हैं ना, समझ नहीं आती। देखो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान करीम में हिकमत, हिकमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी, और अल्लाह ताला जिसको चाहे हिकमत दे, हिकमत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी खैर है जिसको अल्लाह ताला हिकमत दे देता है। ये हिकमत से मुतालिक है, बाज़ दफा हमारे पास नॉलेज होता है मगर हिकमत नहीं होती उसको कैसे अप्लाई करें, कौन से वक्त में क्या बात कहनी है, और कौन से वक्त में इस वक्त इस बात को थोड़ा पीछे कर लें क्योंकि इस वक्त फितना फसाद पैदा हो सकता है, तो हम वो फितने फसाद क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं तो हम तो हक में थे और हमने हक बात ही कहनी है। चाहे हक बात कहें जरूर, लेकिन अब ये भी तो हक ही बात है ना, ये देखिए जो काबा की एक तामीर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है, अब मुसलमानों का गलबा था, मुसलमानों ने फतह कर ली थी, क्या मुश्किल था इस काबे को दोबारा बनाने का, कोई मुश्किल नहीं था। देखिए गालिब कौन है इस वक्त, कुफार थोड़ी गालिब थे, मुसलमान ही थे ना, और सब मुसलमान हो चुके हुए थे वहां पे, तो कोई नहीं था ऐसे कि जो खड़ा हो जाएगा, मगर ये खदशा था कि वो अब इस वक्त कहेंगे अभी तो नए नए मुसलमान हुए ना, इस्लाम में भी अभी पक्के नहीं है, अब कोई कहे नहीं तो क्या तुम सही मुसलमान नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता और कोई आगे से चूचरा करता। अब कितनी बड़ी हिकमत देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी मसलहत अपनाई इसमें, सब मुसलमान है और हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता, और वो भी एक गालिब उन कौम का जो कि यानी अभी फतह कर चुकी थी, मफतूह थी, तो उनकी तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, ऐसा नहीं होना था कि कोई रोक सकता था उनको, लेकिन हाँ लोगों के दिल में खदशात पैदा होते, लोगों के दिल में एक बिगाड़ आ सकता था कि ये क्या कर रहे हैं, और वो अभी न्यू एंट्री उनकी हुई थी। इसी तरह जो लोग इस्लाम में भी नए नए एंटर होते हैं, हम उनके ऊपर भी कभी कभी इतने सख्त और ऐसी चीजों को जो कि बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती उस वक्त उनको लेकर बैठ जाते हैं जब अभी वो नए दाखिल हुए हैं, बस अब नए बर्थ मुस्लिम है और अभी हम पूरी तरह नहीं हम दीन की हर एक चीजों को पकड़ पाए, लेकिन हम उनको चाहते हैं कि ये आज ही परफेक्ट हो जाए और आज ही इनका सारा हो जाए। ये चीजों को मसलहत से लेके और हिकमत इसमें बहुत जरूरी है। لیکن ہاں یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جہاں پہ فرائض کا معاملہ ہے وہاں پہ ہم کہیں نہیں نہیں اب تو ہم حکمت سے کام لیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سمجھ عطا فرمائے, یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بھی حکمت نصیب کرے کہ ہم اتنا پڑھ کے اس کے بعد یہ نہ ہو کہ لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور طرح طرح کی. اسی طرح دیکھیں ایک اور چیز, ابھی لوگ نئے نئے قرآن پڑھنے پہ آئے ہیں, اب ہم ان کو یہ بتا دیں, شروع کر دیں سب سے پہلے, دیکھیں آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں صحیح, اب آپ کو رفعی دین کرنا چاہیے, انگلی کو ایسے اٹھانا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں جو بندہ ابھی نیا نیا قرآن پڑھنے شروع ہے آپ نے اس کو یہ شروع کر دی تو وہ کہے گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی نہیں. اسی کی وجہ سے میں نے حدیث میں بھی آنے کے لیے شرط رکھی تھی کہ اتنے پارے آپ کے مکمل ہونے چاہیے تب آپ حدیث کی کلاس میں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کی بیس بن چکی ہے اور پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں, ورنہ کئی مسئلے مسائل اس میں آئیں گے آپ کہیں گے یہ کیا باتیں ہیں, یہ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کون سی چیز پڑھا رہے ہیں, ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنی. تو لیٹ پیپل اسٹیبلش ان دین فرسٹ, ان کو پہلے بیسک چیزوں کے اوپر آنے دیں, اس کے بعد جب وہ پورے اس پہ پکے ہو جائیں, نماز اپنی پکی کر لیں. دیکھیں آپ تہجد کی بات بتائیں, اس کے فضائل بتائیں, آپ اشراق کے فضائل بتائیں, آپ ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کریں, نہ کہ انگلی ہلانے کے اوپر آپ کا سارا زور ہو جائے. کبھی میں بھی آپ لوگوں کو بیٹھ کے بتاتی ہوں کہ نہیں آپ نے بس یہ کرنا اور اس طرح کی نہیں آپ نے نماز پڑھی, لوگوں کی نماز میں خشوع تو آنے دو, لوگوں کو اپنی نماز کی پابندی تو کرنے دو, لوگوں کو نوافل کی طرف تو رغبت دو, بجائے اس کی کہ ان چیزوں کے ہم اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, پیر سے پیر ملا, ٹھیک ہے وہ ساری احادیث بہت اچھی بہت, اور ہمیں ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے سب سے کلوزسٹ اس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, لیکن بعض چیزیں اپنے وقت پہ ہونا تو وہ صحیح ہیں. اب دیکھیں یہ نئے مسلمانوں ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے, کیونکہ نئے نئے آئے ہیں. جب وقت آئے بعد میں, جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا, کسی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, انہوں نے آرام سے کر لیا, لوگ اسٹیبلش ہو چکے تھے. اب اس طرح ہی آپ دین میں لوگوں کو آنے تو دیں, ان کو ذرا سیٹل تو ہونے دیں. آپ فوراً ابھی وہ چار دن ہوتے نہیں ہیں, آپ نماز کے مسائل, ان کے مسائل, ان کے مسائل, اب کرنا ہے کہ نہیں قرآن خوانی, اب فلانے کی کرنے, یہ ان چیزوں کو کیوں لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو, مسئلوں کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, پہلے یہ تو چیزیں لوگوں میں ڈالیں. ہم بیس کو چھوڑ کے اور وہ برانچز سے شروع کرتے ہیں چیز. تو خدا کے لیے آپ لوگوں کو میں کہوں گی, جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, بعض دفعہ وہ بات ہوتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہو جاتی کہ آپ پڑھ تو ماشاءاللہ رہے ہیں, لیکن اس کو کوشش کریں کہ جو آپ کو پہنچانے کا طریقہ بھی آئے, کس بات کو کس وقت پہنچانا ہے وہ بھی آنا چاہیے آپ کو. اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے دم پہلے لگانا چاہیں اور بھوننا بعد میں چاہیں تو وہ تو سارا خراب ہو جائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز پہلے, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی. مت پہلے سٹیج پہ یا دوسرے سٹیج پہ لوگوں کو فروئی باتیں لے کے بیٹھ جائیں اور فقہی مسائل ان کو سمجھانے شروع ہو جائیں کہ ہمارے اس کے اندر یہ ہے, وہ تو شافعی والے کرتے ہیں, وہ تو حنفی والے کرتے ہیں, ہم تو ایسے کرتے ہیں, فلانے تو ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو صحیح نہیں ہے, وہ نہیں صحیح اور وہ نہیں صحیح. ان چیزوں میں مت لے کر جائیں لوگوں, کہیں بس ہم مسلم ہیں, دیکھو آؤ یہ حدیث ہے اس کے اندر ایسی ہے, اور اس میں بھی حدیثیں بھی وہ والی حدیثیں چن چن کے لے کر آنا جس میں لوگوں کے اختلاف ہیں, ان کو چن چن کے ہائی لائٹ کرنا. یہ کس نے بتائی حکمت کہ کیا ساری حدیثیں ایمان, دیکھیں آپ نے یہ شروع کی کتاب, آپ نے ایمان کا پڑھا, احسان کا پڑھا, وہ کیا چیز ہوتی, اسلام کا پڑھا, وہ کیا چیز ہوتی, پھر ایمانیات کا پڑھا, وہ کیا چیز ہوتی, یا پہلے دن سے ہی آپ یہ حج کے یا وہ اس کے ایسے مسائل جو حیض کے یا نمازوں میں ایسے مسائل جو فروئی مسائل ہوتے ہیں وہ کیا پہلے دن پڑھنے بیٹھ گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو جیسے یہ سیکوینس ہے اسی طرح کریں. قرآن بھی اترا تھا تو سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر نہیں اترا تھا, پہلے عقیدے کے اوپر, اللہ رسول آخرت, یہ عقیدے مضبوط کیے گئے تھے. اور ہم پتنی کس فریم, آج ہم نے سنا ہے نا کہ اگر یہ ہے تو کل ہم چار لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ جائیں گے, وہ تو میں نے تو یہ سن لیا. آپ کو پتا ہے یہ تو صحیح نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں. اچھا ہمیں بھی نہیں پہلے پتا تھا لیکن اب ہمیں پتا چل گیا یہ تو نہیں صحیح ہے جو آپ نے کیا ہوا. تو یہ جو آپ نماز جس طرح پڑھ رہی تھی نا ویسے بالکل طریقہ نہیں صحیح. آپ مجھے بتائیں کتنا لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے, چاہے وہ ابھی قرآن میں نئے نئے آ بھی چکے ہیں تب بھی نہیں سنیں گے. تو پلیز پیشنس, صبر, اس کے ساتھ چلیں. لوگوں کو دین سے بھگائیں نہیں، متنفر نہیں کریں، ان کو دین کے قریب لانے کی کوشش کریں، نئی نئی چیزوں کو فوراً امپلیمنٹ، کیونکہ جو نئی چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ نے بھی ایک ٹائم پہ جا کے جب کوئی چیز سیکھی نا تو آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان ہے. آپ کو بھی پہلے دن، ابھی آپ چار دن ہوتے کلاس میں آئے ہوتے تو میں آپ کو بتانا شروع کر دیتی، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی تھی. اسی طرح لوگوں کو ایسے مسئلوں کی طرف نہ لے کر جائیں، اعتقاد، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان پہلے مضبوط کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر آپ پلرز آف اسلام میں بھی جا رہے ہیں تو اس کی بھی مین چیزوں کو پہلے فوکس کریں، نہ کہ چھوٹے چھوٹے کا انگلی ہلانا نہ ہلانا، اس سے کوئی نماز میں نہیں کوئی وہ آ جائے گا. ہاں اگر نماز میں خشوع ہے، اگر نماز وقت پہ پڑھی جا رہی ہے، اگر وضو کی شرائط پوری کی جا رہی ہے، صحیح سے اس نے وضو کیا ہے، اس کو پاک صاف ہے، صحیح پاک جگہ ہے، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ انگلی ہلانا زیادہ امپورٹنٹ یا رفع یدین زیادہ امپورٹنٹ؟ تو یہ چیزوں کو سمجھیں پلیز. اور جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں علم میں، اور زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اپنی زندگی میں چلیں. کسی کو بتانے سے پہلے ضرور سوچیں کہ کیا یہ چیز بتانا اس ٹائم پہ اپروپریٹ ہے یا نہیں، اور دوسرا کس طریقے سے بتائی جائے دوسرے کو. کیا نہ کہ ہے فیضر بس میں نے تو بتا دیا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی. وہ ڈرنے یا نہ ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بڑے نہ ڈر ہیں، وہ ان کی بہادری اسی کے اندر ہوتی ہے کہ ہم نے منہ پہ دے ماری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی کسی سے ڈرتے تو نہیں تھے یہاں، لیکن حکمت تھی ان کے اندر. ہماری بے وقوفیاں، اس کو ہم کہتے ہیں بہادری، تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. آپ دوسرے کی اصلاح نہیں چاہتے، آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ میں بتا دوں کہ میرے پاس کتنا نالج ہے اور میں نے کتنا پڑھا ہوا، تم لوگ سارے غلط ہو اور میں ہی صحیح ہوں. خیر خواہی یہ نہیں ہوتی، سر سے اتارنا نہیں ہوتی، غیر خواہی آہستہ آہستہ دوسرے کو اس طرف کو لے کر آنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سب اسٹوڈینٹس کو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات، کیونکہ آگے انشاءاللہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور آپ لوگ جب کام کریں گے تو اس طرح کا کام نہیں کریں جس سے کہ کوئی بگاڑ آئے اور پھر مجھے لوگ کہیں کہ دیکھیں آپ کی کلاس کے لوگوں نے یہ کہا، آپ کی اسٹوڈینٹ ہیں انہوں نے فلانے نے ہمیں یہ کہہ دیا. تو وہ بےچارے تو ابھی آئے ہی، پہلا قدم ہی انہوں نے رکھا اور ہم ان کو بس جھپٹ پڑے کہ ہم بس ان کو اچھا رہا ہی علم دے کے ہٹیں گے. اسی طرح جو لوگ گروپ انچارجز ہیں وہ اپنے گروپس میں بھی حکمت کے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ سب جو حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہیں بہت سینئر لوگ ہیں. آپ لوگ حکمت کے ساتھ نہیں اگر چلیں گے، نئے آنے والوں کو خدا نخواستہ آپ بھگا دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ابھی نہیں کلاس شروع ہوئی وہاں پہ، جب ہو جائے پلیز مجھے بتا دیجیے، ہم آگے کنٹینیو کریں پھر. جی ایک دفعہ چیک کر کے مجھے بتا دیجیے. چلیں خیال میں ابھی نہیں شروع ہوئی. اچھا جی جی چلیں صباحت، اب آپ یہ والا بتا دیں سوال کہ حدیث نمبر 844 میں پردے کے احکامات کے بارے میں آتا ہے. اب پردے، یہ بھی ایک بہت ہی، کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم یہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.